हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रिय पंचशील भक्तवृंद, दामोदर देश भक्तवृंद, फेसबुक के भाग्यशाली भक्तों, और हमारे यहाँ साक्षात सामने बैठे हुए देवकी नंदन प्रभु जी आए हैं, आप सबका श्रीमद् भागवत के अंतर्गत जो वंदना प्रार्थना स्तुतियां हैं उनका आप श्रवण करते आ रहे हैं। और हम चार कुमार जो भगवान का अवतार है सनकादि कुमार, ब्रह्मा जी की प्रेरणा से वैकुंठ में भगवान के दर्शन के लिए सातवें दरवाजे के ऊपर जय विजय के द्वारा रोके गए, क्रोधित हो गए, कुपित हो गए, श्राप दे दिया। भगवान विष्णु साक्षात भागते हुए दरवाजे के ऊपर आ गए और उनका दर्शन किया और उनके चरणों में लगी हुई तुलसी और उसके ऊपर जो चंदन और केसर था उसके सौरभ से इनके ब्रह्म आनंद का जो एक अद्भुत सुख था वो तुच्छ लगने लगा और भगवान के सुंदर रूप का, लावण्य भगवान का, माधुर भगवान का जो स्वरूप है उसको देखकर भक्ति से भरपूर मन हो गया और शरीर में रोमांच हो गया, आंखों में अश्रु, और फिर उन्होंने प्रार्थना की। ये प्रार्थना हम 46 श्लोक से पढ़ते आ रहे हैं, आज 50वां श्लोक 15वें अध्याय का पूरा करते हैं। और ये प्रार्थना सुन के फिर भगवान क्या कहते हैं और भगवान जो कहते हैं वो सुनकर पुनः ये कैसे प्रार्थना करते हैं, ये एक भगवान के अवतार, भगवान के दर्शन के लिए गए हैं तो ये, और ये चार कुमार पहले भी आपसे इस बात का, इस बात के ऊपर चर्चा हुई है। ये चार कुमार एक तो भगवान के अवतार की श्रेणी में आते हैं 24 अवतारों में ब्रह्मा जी के पुत्र। दूसरा, ये चार कुमार भागवत संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, इन्होंने भागवत सीधी अनंत शेष बलराम जी से सुनी है। सो ये वैष्णव संप्रदाय के आचार्य भी है, निम्बारक संप्रदाय जो कुमार संप्रदाय है। तो आप एक एक एक, एक भागवत पुरुष की प्रार्थना भगवान की प्रति कैसी होनी चाहिए, ये इसका भाव लेकर हम आज 50वां श्लोक जो पूर्णाहुति का श्लोक है, तीसरे स्कंद के 15वें अध्याय का, उसमें चार कुमार हाथ जोड़ के खड़े हैं भगवान के सामने, कह रहे हैं प्रादुश्चक्रथ यदम इदम पुरोहत रूपम तेनेश निवर्तिम अवापोर अलम दृश्य तस्मा इदं भगवते नम इति विदे विधेमा यो अनात्मनाम दुर्दयो भगवान प्रतीतः। कर रहे हैं नमस्कार, क्या कह रहे हैं, नमः इति, नमः इदं, हम आपको नमस्कार करते हैं। प्रादुर्चक्रार्थ इदं, हम तो आपका ध्यान करना चाह रहे थे लेकिन आप साक्षात आपका दर्शन हो गया। प्रादुर्चक्र थे के मतलब आप प्रकट हो गए, दरवाजे के ऊपर दर्शन दे दिया। वैसे पुरोहित, आप प्रोहूत का मतलब है भक्तों के द्वारा पूजने हैं, भक्त आपके नाम लेते हैं गोविंद, गोपाल, दामोदर, ये पुरोहित की, ये जो पुरोहित यहां शब्द है इसकी परिभाषा है भक्तों के द्वारा जो आपके नाम लिए जाते हैं वो नाम के रूप में आपको उनके सामने दर्शन होते हैं, लेकिन यहां तो साक्षात आप, साक्षात आपका दर्शन हो रहा है। तेन निवर्तम, हम संतुष्ट हो गए, इससे हम तो संतुष्ट हो गए, परिसंतुष्ट हो गए। अब आप तो अलम दृश्यो न, क्या हमारा सौभाग्य है, ऐसा सुंदर आपका दर्शन हो गया, हमने ये सोचा भी नहीं था। और तस्मा इदम भगवते, इसलिए भगवान हम आपको नमस्कार करते हैं और हम आपके चरणों में प्रणाम करते हैं, फिर कहते हैं, सावधान करते हैं, कहते हैं यो अनात्मानम दुर्दयो भगवान प्रतीत, भगवान जो अनात्मा नाम है, जिनके हृदय में आपकी भक्ति नहीं है, सेवा का भाव नहीं है, उनको ये दर्शन संभव नहीं, ये तो किसी वैष्णव की कृपा से होता है। हमारे पिता ब्रह्मा जी की कृपा, और आप उन वो आपके हैं मान भक्त, आज आपने हमको ये दर्शन दिया, ये आपकी अहितु की कृपा है। श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं, हे भगवान, हम आपको सादर आदर पूर्वक प्रणाम करते हैं इस आपके अद्भुत रूप को, वो जो आपने कृपा करके हमारे को दर्शन दिया है। ये आपका जो दिव्य रूप है, ये जो दुर्भाग्य वाले हैं उनको दर्शन नहीं होता है, जिनकी बुद्धि कम है, जिनमें भक्ति नहीं है, सेवा का भाव नहीं है, परंतु आपके दर्शन को कर कर हमारा मन संतुष्ट हो गया, आंखें तृप्त हो गई और मन संतुष्ट हो गया। चक्रवर्ती पाद लिखते हैं, हे भगवान, भक्त ही केवल आपके नाम का उच्चारण करके आपका आवाहन करते हैं, हे गोविंद, हे गोपाल, हे कृष्ण। हमारी आंखें आज तो आंखों का उत्सव हो गया, आज हमारे नैनों का उत्सव हो गया कि हम साक्षात आपके इस सच्चिदानंद स्वरूप का दर्शन करके धन्य हो गए, इसलिए बार बार हम आपके चरणों में सादर आदर पूर्वक प्रणाम करते हैं। आपका ये रूप भगवान जो सेवा नहीं करते हैं उनके लिए सुलभ नहीं है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। चक्रवर्ती पाद का बहुत बड़ा तात्पर्य है इसके ऊपर और बड़ा महत्वपूर्ण है। कहते हैं, हम पहले अप्रत्यक्ष रूप से आपकी प्रार्थना करते थे, साक्षात तो हमारे को कोई आपका दर्शन था नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से प्रार्थना करते थे। क्या करते थे? श्रवण करते थे, कीर्तन करते थे, स्मरण करते थे, परंतु आज तो साक्षात अमृत आपके दर्शन से, और लिखा है आज तो साक्षात आपके सानिध्य के का अमृत आपने हमको पिला दिया, आज तो दर्शन दे दिए सामने, पहले दर्शन नहीं हो, हम ध्यान करते थे केवल। और फिर लिखा है, हमको आपने दर्शन दिया, हम तो अपराधी, आपके ये जो दरवाजे के ऊपर द्वारपाल है इनको हमने साप दिया, हम कुपित हुए, हम अपराधी, और हम अपराधियों के ऊपर आपने इतनी दया की, इतनी कृपा की कि साक्षात हमको सामने दर्शन दे दिया। चक्रवर्ती पाद लिखते हैं, इतनी सहनशीलता, इतनी सहिष्णुता, इतना सहना, ये तो भगवान आपकी अनंत कृपा है। इतनी आपके जितनी सहनशीलता किसी में हो नहीं सकती, जिसके द्वारपालों को कोई श्राप दे और उसको आप दर्शन दे, ऐसे कैसे हो सकता है? हमारे ऊपर आपने अहितु की अनंत कृपा की है। भगवान जो आपको पुरोहित, आपको जो भक्त आपको बुलाते हैं, स्मरण करते, कहते हैं, हे नारायण, हे विष्णु, हे गोविंद, हमारे ऊपर कृपा करो, ऐसे वो प्रार्थना करते, क्योंकि आप उनके लिए पूजन्य हैं। हमारा जीवन आज सफल हो गया, आज आपने हमें दर्शन दे दिया। इसको ऐसे लेना चाहिए कि हम रोज मंदिर में जाके भगवान का दर्शन करते हैं, तब ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए जैसे कर रहे हैं चार कुमार, और फिर भगवान प्रसन्न होके एक दिन साक्षात दर्शन दें, तब प्रार्थना दूसरी जो दोबारा ये कुमार प्रार्थना करेंगे 15 श्लोक से 16वें अध्याय में। तो ये भगवान के दर्शन के लिए कहते हैं, हमारे ऊपर कृपा कीजिए, कहते हैं सब लोग, हमारा जीवन सफल हो गया, आपने अपने आप हमारे सामने, आप अपने आप हमारे सामने प्रकट हो गए, आपने हमें दर्शन दिया। ये तो उन भक्तों की कृपा है जो आपको ना, उन भक्तों को आप ऐसा दर्शन देते हैं जो निरंतर आपका स्मरण करते हैं। भक्तों के ऊपर, भक्तों की कृपा से हमारे ऊपर भी कृपा हुई। फिर कहते हैं, आपके दर्शन से हमारी आंखें दृश्य हमारी आंखें अथवा हमारी जो चेतना है, वो आनंदित हो गई, आंखें प्रफुल्लित और चेतना और बुद्धि, बुद्धि जो है बुद्धि प्रबुद्ध और चेतना हमारी जो है वो चमक गई आपके इस दर्शन से। और इसलिए हाथ जोड़कर और सर को ऐसे हाथ लगाकर प्रणाम कर रहे हैं और कह रहे हैं हम आपको नमस्कार करते हैं। अब अंतिम लाइन का भाव बताते कहते हैं, भगवान उनके सामने तो आप प्रकट नहीं होते हैं। तो इसमें भगवान कहां है, बोला आत्मा, आप तो आत्मा हो इस जगत की, और जो आपकी सेवा नहीं करते हैं अनात्मा नाम, जो आपकी सेवा नहीं करते हैं उनको आप दर्शन नहीं देते हैं आप तो। और फिर के लिखते हैं इसका एक अर्थ और ये होता है, जो आपको आपकी सेवा नहीं करता, आपकी भक्ति नहीं करता, उसकी तो मानो आत्मा ही नहीं है, अनात्मा शब्द है अनात्मा नाम, उसकी आत्मा ही नहीं है, इसका मतलब वो मरे हुए हैं, मुर्दे हैं। जो जीवित ही मुर्दे हैं जो आपकी भक्ति नहीं करते हैं, जीवित ही मुर्दे है, इसका अर्थ ये लिखते हैं। और फिर लिखा है, अब चक्रवर्ती पाद को लगा ऐसे कि ये क्या कहूं मैं, ये तो मिट्टी के समान, ये तो उल्लू की तरह अंधे हैं जिनको दिन में सूर्य दिखाई नहीं देता। सूर्य रोज उगता है, भगवान आप नित्य सबके ऊपर कृपा करते हैं, लेकिन ऐसे अनात्मान जो आपके सेवा में नहीं लगते, आपकी भक्ति नहीं करते, वो उल्लू की तरह प्रकाश में, प्रकाश होते हुए भी अंधकार में रहते हैं, वो प्रकाश होते हुए भी अंधकार में रहते हैं। और फिर कुमार कहते, कुमार कौन है, चक्रवर्ती बात लिखते हैं, कुमार तो ब्रह्म साक्षात्कार की मूर्तिमान रूप है, ब्रह्म आनंद में तो पहले से ही प्रतिष्ठित थे, वो ब्रह्म आनंद के शिखर के महात्मा थे, चूड़ामणि थे ब्रह्म आनंद के, साक्षात जो है चूड़ामणि शिखर थे ब्रह्म आनंद में, ऐसा चांदोग्य उपनिषद में लिखा है। क्या लिखा है, शुद्ध तस्मै मृदित तक्षायायः तमसः पारं दर्श्यति भगवान सनत कुमाराः। सनत कुमार को प्रणाम करते हैं, भगवान शब्द लिखा है, ओ अज्ञानता से परे साक्षात ब्रह्म का जिन्होंने अनुभूति की है, ये उनकी महिमा उपनिषदों में गाई गई है। जब ऐसे महात्मा भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं और उनके प्रार्थना के भाव को आप देखिए, तो हमको समझना चाहिए कि भगवान के साक्षात स्वरूप की, रूप की भक्ति कितनी आनंददायक होगी, जहां ब्रह्म साक्षात्कार के कोटि के महात्मा, चोटी के महात्मा भगवान की महिमा गा रहे हैं। ऐसे अद्वैत शिखर ब्रह्म आनंद की चोटी के ऊपर पहुंचा हुआ उनका ये तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के समय समकालीन ही समझे जाना चाहिए। प्रकाश आनंद सरस्वती न तो चैतन्य महाप्रभु से प्रभावित होके वैष्णव हो गए, एक मधुसूदन सरस्वती हुए हैं बनारस में, वो ब्रह्म आनंद की चोटी के ऊपर अद्वैत के शिखर के चूड़ामणि थे, लेकिन ब्रज में जब आए और कृष्ण के मधुर और सुंदर स्वरूप से प्रभावित हो गए, तो उन्होंने कहा, उन्होंने लिखा है वंशी विभूषित करानुभा, जिसके हाथ में बंसी है, जिसके मुख में लाल होंठ है, ऐसे भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त और कोई तत्व हूं मैं जानता ही नहीं हूं, और फिर कहते हैं, मैं अद्वैत शिखर की चोटी का महात्मा, इस गोपियों के लंपट ने मेरे को वहां से घसीट कर वृंदावन की गलियों में भटकने के ऊपर मजबूर कर दिया। वो भगवान शंकर से कृपा मांग कर आए थे और यहां एक बार नहीं दूसरी बार में भगवान का साक्षात, ऐसा कोई साक्षात्कार हुआ जैसे इन कुमारों को हुआ। और मधुसूदन की भगवत गीता के ऊपर, टीका के ऊपर चक्रवर्ती बात कहीं उनका भाव, वो उनका स्मरण करते हैं। तो ये श्लोक पूरा मेरे को याद नहीं है लेकिन बहुत अच्छा है। वंशी विभूषत करानन भात पीताम्बरा धरात, बहुत अच्छा है, अद्भुत श्लोक है चक्रवर्ती मधुसूदन सरस्वती जी। तो कहते जब इतने भगवान की संज्ञा उपनिषदों में जिनको दी गई है और जो ब्रह्म साक्षात्कार के चूड़ामणि हैं, उनके मुख से भगवान की ऐसी महिमा सुनने के बाद ये समझना चाहिए कि भगवान की साक्षात स्वरूप की उपासना, और वो भी भक्ति के मार्ग से, अति उत्तम है। और फिर आगे लिखते हैं, इसका अर्थ है कि भगवान का नाम रूप गुण लीला ये जितने भी हैं ये सब आध्यात्मिक है, ये सब आध्यात्मिक है, इनका अपना आध्यात्मिक स्वरूप है। भगवान का धाम भी आध्यात्मिक स्वरूप है, लीला तो भगवान की स्वरूप की लीला होगी, ब्रह्म की क्या लीला होगी, ब्रह्म कहां लीला करेगा। तो लीला भी, धाम भी, नाम भी, गुण भी, ये भगवान के रूप के होते हैं। इसलिए ये समझना चाहिए क्या समझना चाहिए ऐसे नहीं होते तो भक्ति कैसे सफल होती। भक्ति में तो भगवान का साक्षात्कार साक्षात होता है। तो इसका, इसलिए कपिल जी ने इनको, इनके विषय में कहा है, निर्गुण है, इसमें कोई भौतिक तीनों प्रभुगुणों का प्रभाव नहीं है। तब ये बहुत सुंदर श्लोक कहा है, भारत तात्पर्य में ये लिखा है, मुक्ता नाम अपि भक्तिर ही नित्य आनंद स्वरूपिणी। भक्ति जो है वो मुक्त लोगों के लिए, जो मुक्त हो चुके हैं उनको आनंद देती है। मुक्ता नाम अपि भक्ति ही नित्य आनंद स्वरूपिणी, भक्ति नित्य आनंद स्वरूप देती है किसको, जो मुक्त है उसको। और फिर लिखा है, आगे लिखा है ब्रह्म सूत्र में, ये ब्रह्म सूत्र का भाष्य है, श्रुति ने ये लिखा है, आ प्राण्यन्नात तत्रापि दृष्टिम भक्ति, मुक्ति से पहले भी भक्ति का साधन किया जाता है और मुक्ति के बाद भी भक्ति चलती है। ज्ञानी मुक्ति के बाद कुछ नहीं कर सकते लेकिन भक्ति, मुक्ति से पहले भी, मुक्ति के बाद भी भक्ति चलती है और तभी शुद्ध भक्ति कहलाती है। तभी भगवत गीता से ब्रह्मभूता प्रसन्न आत्मा का भाव है कि जब कोई मुक्त होकर ब्रह्म के स्तर पर आएगा तभी भगवान श्री कृष्ण की पराभक्ति को प्राप्त करेगा। ये ब्रह्म सूत्र का श्लोक है। और मध्वाचार्य, श्री मध्वाचार्य ने इस श्लोक के ऊपर तात्पर्य में लिखते हैं, सौ पर्ण श्रुति, एक सौ पर्ण श्रुति है उससे श्लोक लिखते हैं, सर्वदैवेनम उपासित यावन मुक्तिर अमुक्ता है एनम उपासते। भगवान की भक्ति सर्वत्र सब समय है, सब समय है। मुक्त आत्मा भी भगवान की भक्ति करते हैं और जो मुक्त नहीं है वो भी करते हैं। जैसे हम सब मुक्त नहीं है भक्ति कर रहे हैं, और ये चार कुमार मुक्त हैं, ये सुखदेव महाराज मुक्त हैं, ये नारद मुक्त है, ये भी भगवान की भक्ति कर रहे हैं। तो ये मुक्ति, भक्ति मुक्ति से पहले भी है और मुक्ति के बाद भी। इसका मतलब मुक्ति के बाद सब कुछ खत्म नहीं हो जाता, निर्विशेष नहीं है, वहां बहुत विशेषता है, वहां भी भक्ति चलती रहती है। और चक्रवर्ती पाद आगे लिखते हैं प्रहलाद और बलि महाराज, ये हैं दो महाजन। विष्णु पुराण में ऐसे लिखा है, पाताले कस्य न प्रीतिर विमुक्तस्यापि जायते। नीचे के जो लोक हैं वहां कोई मुक्त भी हो तो भी भक्ति का भाव उत्पन्न नहीं होता। और इस धरती के ऊपर कितना हमारा सौभाग्य है कि ये भक्ति हमको सुलभ प्राप्त होती है। और इसके उपरांत ये अध्याय पूरा होता है और जो 16वां अध्याय शुरू होता है उसमें ब्रह्मा जी कह रहे हैं, कथा ब्रह्मा जी कर रहे हैं। ब्रह्मा जी कह रहे हैं ऐसे जब चार कुमारों ने जो योग में प्रवीण थे उसके नियमों को जानते थे, उन्होंने जब भगवान की ऐसे प्रार्थना की, भगवान जो वैकुंठ नाथ है उन्होंने बोलना शुरू किया। तो भगवान क्या के वैकुंठ नाथ क्या बोलते हैं? भगवान वैकुंठ नाथ कहने लगे, ये मेरे दो द्वारपाल जय और विजय है ना, इन्होंने मेरे भाव को नहीं जाना और आपका अपराध कर दिया। मेरे भाव को नहीं जाना, आपका अपराध कर दिया। आपने जो इनको दंड दिया है ना, अच्छा किया है। क्योंकि आपका अपराध किया था, आपको रास्ता में डंडा दिया था इसलिए। और फिर भगवान विष्णु कहते हैं, मैं आपसे क्षमा मांगता, मैं तो ब्राह्मणों की पूजा करता हूं, मेरे लिए ब्राह्मण पूजनीय है, मेरे सेवकों ने अपमान कर दिया, मैं समझता हूं मैंने ही अपमान किया है। सेवक का अपमान स्वामी का अपमान माना जाता है, ऐसा मान्यता है। स्वामी के नाम में सेवक अगर अपराध करे तो स्वामी की निंदा होती है। ये हमको समझना चाहिए, कृष्ण भावना के भक्त अगर कहीं कोई त्रुटि करते हैं तो श्रील प्रभुपाद का नाम के ऊपर जो है लोग कहेंगे कि ऐसा कौन था जिन्होंने ये शिक्षा दी है, गुरुजनों के नाम पे जो है लोग उंगली उठाएंगे। इसलिए सावधान होके, ये भगवान शिक्षा दे रहे हैं और कहते हैं, भगवान कह रहे हैं, वो जो दोष निकाल के बात करेंगे सेवक के दोष की स्वामी पे, वो ऐसे लगेगा कि चमड़ी के ऊपर कुष्ठ रोग हो गया है। भगवान आगे कहने लगे, ब्राह्मण आप लोग कहते हैं मेरे को तीर्थ पाद, लोग कहते हैं कि भगवान चंडाल भी आपके नाम लेने से पवित्र हो जाता है, लेकिन ये सारी महिमा ब्राह्मणों आपकी वजह से मेरी है, मेरी भुजा भी ब्राह्मणों आपका अपराध करे तो मैं इसको काट दूंगा। क्योंकि हमारी प्रार्थना में तो ये नहीं है, लेकिन पहले समझना चाहिए कि भगवान ने कहा क्या है तो ये प्रार्थना कर रहे हैं। भगवान ने ये जब कहा, फिर कहा लक्ष्मी, जिनको सारी संसार जिसको पाना चाहता है और वो मेरे चरणों को छोड़ के कहीं जाती नहीं है, वो वहीं रहती है और मेरे चरणों की रज जो प्राप्त करे वो सब दोषों से मुक्त हो जाता है। ये सारी लक्ष्मी मेरे चरण नहीं छोड़ती, मेरे चरण धूलि जगत का उद्धार करती है, ये तो आप ब्राह्मणों की कृपा से है। ये शुद्ध भक्त जो है उनके कारण मेरी ये महिमा है। मैं यज्ञ से इतना आहुति से प्रसन्न नहीं होता हूं जितना ब्राह्मण के मुख से, ब्राह्मण को भोजन कराया जाता है मैं संतुष्ट हो जाता हूं। तो भगवान ने जब इतनी सारी महिमा कही उनकी, तो ब्राह्मणों की ये जब महिमा की, तब चारों कुमार आश्चर्यचकित होकर भगवान की ओर देखने लगे ब्रह्मा जी के। हाँ, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, भगवान ऐसे बोल रहे थे, उनके शब्द बहुत ही सांत्वना देने वाले थे, बहुत सुख देने वाले थे, उनमें नीति थी। उस और जो भगवान कह रहे थे वो शब्द चारों कुमारों के लिए पूजनीय मान रहे थे, परंतु कुमार फिर भी संतुष्ट नहीं हुए, क्योंकि उनका मन क्रोध के सांप ने काटे थे। उनके मन को क्रोध के सांप ने काटा था, उनको क्रोध आ गया था उन भगवान के पार्षदों के ऊपर। तो भगवान के, मैं इस श्लोक को पढ़ लेता हूं, 13वें को, क्यों है नहीं अपने उसमें, फिर भी पढ़ने का सुख लेते हैं। ब्रह्मा वाच अथ तस्यो सतिम देवीम तस्य उषतिम देवीम ऋषिकुल्याम सर्वसतिम सरस्वतीम नावसादाय मन्यो दिष्टा दष्टानाम मन्यो दष्टानाम, मन्यो मतलब क्रोध, दष्टानाम मतलब डंके हुए थे सांप के डंक से, तेषाम आत्मा अपि अतृप्तेय, अंदर से वो तृप्त नहीं थे। जैसे भगवान श्री प्रभुपाद जी चार कुमार क्रोध रूपी सांप से डसे हुए थे, क्रोध रूपी सांप ने उनको मानो डसा है, उनकी अंतरात्मा संतुष्ट नहीं थी। भगवान के इतने मधुर और प्रबुद्ध करने वाले प्रवचन से भी, वो तो भगवान के वचन कैसे थे, सरस्वती थी साक्षात, फिर भी संतुष्ट नहीं हुए कुमार। अंदर में उनको खेद था कि ये भगवान जो कह रहे हैं, ब्रह्मा जी के इस बात के बाद कुमार सोच रहे हैं चारों। वो सोच रहे हैं, बात तो सत्य है, भगवान ने नाप तोल के कही है, परंतु उनका अर्थ बहुत गंभीर है, उसका उद्देश्य समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि उनके शब्दों के बहुत से अर्थ हैं, बाहर से एक अर्थ है, अंदर का दूसरा अर्थ है, इसलिए कुमार विचलित थे। और ऐसी स्थिति में प्रसन्नचित होने का प्रयास करके दोनों हाथ जोड़ के कुमार प्रफुल्लित, जिसको कहा गया है, रोमांचित होकर भगवान से प्रार्थना करने लगे, जो योग माया से सुंदर स्वरूप में उनके सामने खड़ा था। तो ये 16वें श्लोक में प्रार्थना का पहला श्लोक है। इन श्लोक पहले दो श्लोक, 14वें श्लोक के ऊपर बहुत लंबा तात्पर्य है, एक एक शब्द के दो दो अर्थ निकलते हैं। एक शब्द में अगर कहें तो इसका अर्थ ये है, चार कुमार कह रहे थे कि भगवान इतनी हमारी प्रशंसा कर रहे हैं, ये सचमुच में हमारी प्रशंसा है कि हमारे साथ विनोद किया जा रहा है, मजाक किया जा रहा है, एक बात। दूसरी बात, क्या भगवान हमसे ज्यादा संतुष्ट हैं या अपने इन द्वारपालों से। सही माना में, सही अर्थ में समझा जाए तो भगवान अपने पार्षदों से अति प्रसन्न थे, कुमारों की प्रशंसा कर रहे थे मर्यादा में, नहीं तो दो पार्षदों को लेने के लिए भगवान ने तीन तीन अवतार लिए तो ऐसे क्यों भगवान करते। ये भगवान की इच्छा थी। अब एक बात देखें, न पार्षदों को अपमान करने की आवश्यकता थी, न कुमारों को क्रोधित होने की आवश्यकता थी, ये भगवान की इच्छा थी। ऐसे लिखा है कि एक बार लक्ष्मी को भी इन द्वारपालों ने रोक दिया था, लक्ष्मी ने नारायण को जाके कहा कि ये बड़े उद्दंड हो गए, मुझे रोक दिया। भगवान ने कहा पत्नी के लिए पार्षदों को डांटूंगा तो लोग कहेंगे स्त्री स्त्री का स्त्री के हाथ में है, रुको कोई लीला रचते हैं। और हमारे आचार्य कहते हैं भगवान के हाथ में खुजली होने लगी है, बहुत समय हुआ किसी से युद्ध किया नहीं, कौन मुझसे युद्ध किया करेगा। तो उनकी लीला शक्ति ने चार कुमारों को प्रेरित किया, वैकुंठ में बुलाया और फिर उनको और द्वारपालों को उनका अपराध करने के लिए भगवान की योग माया ने उनको अपराध करने के लिए डंडे रखवा दिए और कुमारों को क्रोध करा दिया। और फिर भगवान कुमारों की प्रशंसा कर रहे हैं और अपने पार्षदों को ही बहुत स्नेह के साथ बात कर रहे हैं, आप चिंता मत करो मैं आऊंगा आपको वापस लेने के लिए। तो ये भगवान की लीला है। लेकिन हमको इससे हम क्या सीखना है, परंतु कि इतने बड़े भगवान के अवतार भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं तो सबको करना चाहिए। तो ऋषि ऊचो, अब ऋषि प्रार्थना कर रहे हैं, न वयम भगवान विद्मास तव देव चिकीर्षितम कृतो मे अनुग्रहश्चेति यदा अध्यक्ष प्रभाषसे। कह रहे हैं चारों कुमार, कह रहे हैं न वयम भगवान विद्मान, भगवान हम नहीं जानते, हम नहीं समझ रहे, आपने इतना बड़ा प्रवचन दिया, हमारी इतनी प्रशंसा की, तव देव चिकित्सा, आपका उद्देश्य क्या है भगवान ये हम नहीं समझते, आपकी इच्छा क्या है, आप क्या चाहते हैं हम समझ नहीं सकते। कृतो में अनुग्रह चेती, लगता है कि आप ऐसे कह रहे हैं जैसे हमने यहां आकर आपके ऊपर बड़ी कृपा की, आप तो ऐसे कह रहे थे कि आपके चरणों की धूलि मेरी महिमा बढ़ा रही है, मैं अपना हाथ काट दूंगा, ये तो आप ऐसे कह रहे हैं जैसे हमने यहां आकर आपके ऊपर अनुग्रह किया है। अध्यक्ष प्रभाषते, आप तो यहां के स्वामी हैं, आप ऐसे कह रहे हैं हमको समझ में नहीं आ रहा है। प्रभुपाद जी लिखते हैं आपके जो ये बातें आपने कही है इसके पीछे उद्देश्य क्या है, आपकी इच्छा क्या है, हम नहीं समझ सकते, आप तो यहां के अध्यक्ष हैं और आप हमारे लिए कह रहे हैं कि हमने यहां आकर बड़ा काम कृपा की है, ये हमको समझ में नहीं आ रहा है। चक्रवर्ती बाद लिखते हैं आपकी इच्छा क्या है भगवान, हम नहीं जान सकते, भगवान की इच्छा कौन जान सकता है। लेकिन ग्वाल बाल कहते हैं ब्रज में, कन्हैया तेरे मन की हम मैंने जानी, कन्हैया तेरे मन की मैंने जानी, ग्वाल बाल कहते हैं कि तुम्हारे मन की हम जानते हैं कन्हैया तुम क्या करना चाहते हो, लेकिन संसार भगवान के मन की नहीं जा सकता। और ये तो भीष्म की स्तुति में हमने सुना था और युधिष्ठिर महाराज को कह रहे थे भीष्म देव कि इनके संकल्प को कोई नहीं जान सकता, शंकर जी कपिल जी नारद जी इतना जानते हैं जितना ये जानने की उनको शक्ति देते हैं, लेकिन इनको कोई नहीं जान सकता। तो लिखते हैं आपकी इच्छा को हम समझ नहीं सकते, आपने ऐसे कह दिया कि हमने आके आपके ऊपर अनुग्रह किया, भगवान के ऊपर क्या कुमारों ने कोई कृपा की है क्या। तो चक्रवर्ती बात लिखते हैं उन्होंने सोचा समझा अच्छी तरह से कि भगवान अपने पार्षदों से प्रेम करते हैं क्योंकि उनके वो पार्षद हैं, हमारी तो ब्राह्मण होने के नाते महिमा गा रहे हैं जबकि भक्तों की महिमा हमसे ज्यादा होती, ऐसे क्यों। फिर भी वो भगवान के मुख से सुनना चाहते थे कि भगवान का उद्देश्य क्या था, भगवान ने जो शब्द कहे उनका अर्थ क्या था, ये कुमार भगवान से के मुख से सुनना चाहते थे। आप कह रहे हैं कि हमने यहां आकर आपके ऊपर कृपा की, ये संभव नहीं है, आपको तो हमको दंड देना चाहिए, हमने आपके घर में आके आपके द्वारपालों को श्राप दिया, आपने ऐसे कहा लगता है कि आपने हमसे विनोद कर रहे हैं कि हमने आके आपके ऊपर कृपा की, कृपा क्या की है, आपके घर में आपके ही द्वारपालों को श्राप दे दिया। इसका अर्थ ये तो नहीं है। और ऐसे भी हो सकता है, आप हमारी इतनी महिमा इसलिए गा रहे हैं कि आप धर्म के प्रचार के लिए, हमारे ब्राह्मणों के द्वारा धर्म का प्रचार होता है, वेद का, वेद को विप्र मत जानते हैं, तो इसलिए आप हमारी प्रशंसा कर रहे हैं क्योंकि हम ब्राह्मण हैं। ऐसा है क्या भगवान? आपका क्या उद्देश्य है, चिकित्सा क्या है आपकी? आप हमको बताइए, हम तो अज्ञानी हैं, हम आपकी बात को और हमकी आपकी इच्छा को समझ नहीं सकते। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, भगवान जो सबसे ऊपर है, सबसे परे है, सबसे महान है, वो जो बोल रहे थे उससे लग रहा था कि इन चार कुमारों ने कुछ गलती की है, पता नहीं इनके शराब दे के गलती की है कि अच्छा किया है, ये उनको समझ में नहीं आ रहा था, और इसलिए वो भगवान के शब्दों में समझना चाहते थे, वो समझ नहीं पा रहे थे। वो इतना समझते थे भगवान इतने निम्रता से क्यों बोल रहे हैं कि हमने, कुमारों ने आकर भगवान के ऊपर कृपा की, ऐसे क्यों कह रहे हैं। और दूसरे श्लोक में, 17वें श्लोक में कुमार कहते हैं, ब्रह्मणस्य परम देवम ब्राह्मणाः कीलते प्रभो विप्राणाम देव देवानाम भगवान आत्मदेवतम। ब्रह्मणस्य परम देवम, प्रभुपाद ने कहा ब्रह्मणस्य का मतलब जो 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 ब्राह्मणी कल्चर है, जो ब्राह्मणों का एक प्रभाव है, परम दैवम उनका स्थान बहुत ऊपर का है। ब्राह्मणाः कीलते प्रभु, हे प्रभु, वो केवल आप दूसरों को सिखाने के लिए ऐसा कह रहे हैं, आप तो पूजने हैं ना। विप्राणाम देव देवानाम, और हे भगवान, हे प्रभु, ये शिक्षा के लिए, जैसे भगवान श्री कृष्ण सुधामा विप्रा की पूजा करते हैं, क्षत्रिय धर्म का पालन करके सिखा रहे हैं कि ब्राह्मण को सम्मान देना चाहिए, और जहां नर्ग को कुएं से निकाला भगवान ने, तब अपने पुत्रों को भगवान कह रहे हैं ब्राह्मणों की संपत्ति लेने वाला गिरगट बना है जेको नर्ग, कोटि कोटि इतने नर्ग ने गाय का दान किया जितने धरती के अंदर, इतने धरती के दाने कोई धूली के गिन सकता है, तारे गिन सकता है, लेकिन गाय कितनी दान दी गिनना मुश्किल है। परंतु एक गाय ब्राह्मण के पास चली गई, वापस आ गई, और ब्राह्मण ने और निर्णय करने में देर हो गई, और नर्ग को, निर्ग को गिरगट बनना पड़ा। इसलिए ब्राह्मण की संपत्ति के ऊपर कभी किसी को आक्रमण करना नहीं चाहिए, अत्याचार ब्राह्मण के ऊपर नहीं करना चाहिए। तो यहां ब्राह्मणों के लिए लिखा है विप्राणाम देव देवानाम, ब्राह्मण तो देवताओं के लिए भी पूजने है, भगवान आत्म देवतम, परंतु आप तो भगवान स्वयं ही सबके लिए पूजने है, फिर आप क्यों कहते हैं कि हम ब्राह्मण जो आए आपके ऊपर कृपा की? तो श्री प्रभुपाद लिखते हैं, आप ही तो ब्राह्मणी कल जो कल्चर है, जो एक ब्राह्मणों का जो वर्चस्व है, उसके तो आप ही निर्देशक हो। आप ब्राह्मणों को इतना सम्मान दे रहे हो सामान्य लोगों को शिक्षा देने के लिए, आप ही परम पूजनीय मूर्तिमान स्वरूप हो भगवान, केवल देवताओं के लिए नहीं ब्राह्मणों के लिए भी। आप देव देवे केवल नहीं है, विप्रों के लिए भी आप ही पूजनीय हैं। तो ये चार कुमार कह रहे हैं, चक्रवर्ती पाद लिखते हैं, ब्राह्मण इतने बड़े महान हैं क्योंकि आप ब्राह्मणों से प्रेम करते हैं, आप उनको सम्मान देते हैं, आप ही ब्राह्मणों के आराध्य देव हैं, देवता आपकी पूजा करते हैं, तो ब्राह्मण को भी आराध्य देव आप ही हैं। इस श्लोक में चार कुमार कहते हैं कि भगवान आपके वचनों को जैसे हैं वैसे समझना बहुत मुश्किल है। ये तो हम जानते हैं कि आप ब्राह्मणों से प्रेम प्रेम करते हैं, ब्राह्मणो देवाय गोहिताय ब्राह्मणिताय, ये तो जानते हैं हम कि ब्राह्मणों से आप बहुत स्नेह करते हैं, तो क्या आपके स्नेह के कारण ब्राह्मणों का इतना सम्मान है कि स्वाभाविक ब्राह्मण इतने बड़े महान हैं? ये बात कैसे समझ में आए? ब्राह्मणों की देवा पूजा करते हैं, कहते ब्राह्मण देवताओं के लिए यज्ञ करते हैं तब देवताओं को आहुति मिलती है, इसलिए देवता कहते हैं ब्राह्मण हमारे लिए पूजने हैं, क्योंकि ब्राह्मण ही हमारी पूजा कराते हैं, हमारे यज्ञ कराते हैं। परंतु आप तो भगवान हैं, आत्मदेवतम, स्वभाव से ही आपकी स्थिति तो सबसे ऊपर है, आप तो ब्राह्मण नहीं है, आप तो ब्राह्मण से ऊपर है। और आत्मदेवतम का एक अर्थ और है, आपकी आशीर्वाद नहीं है तो फिर ब्राह्मण किस काम का है, और तो मृतक के बराबर है। तो आप जो कह रहे थे कि ब्राह्मण आपकी कृपा के बिना मेरे चरणों की रज की कोई महिमा नहीं है, इसका अर्थ क्या? ये शब्द हमें समझ में नहीं आया। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं ब्रह्म संहिता में, लिखा है ब्रह्म संहिता में, ईश्वर सर्व ईश्वर परम कृष्ण भगवान सर्व कारण कारणम है, तो भगवान देवताओं का भी आदि कारण है और उनमें भी महान देवता ब्रह्मा और शंकर है, तो ये सभी तो भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। और फिर लिखा है भगवान सबसे पूजनीय है, फिर भी भगवान ब्राह्मणों से स्नेह करते हैं, ब्राह्मणों के प्रति भगवान का फेवर है, उसका कारण क्या है? क्योंकि वो ब्राह्मण के मर्यादा को पालन करके रखे, ब्राह्मणिकल कल्चर को सुरक्षित रखा है, और ब्राह्मण के अंदर लक्षण होने चाहिए, कौन से? समा दमा, इंद्रियों को संयम में रखना, इंद्रियों और मन संयम में हो, पवित्रता हो, शुचि हो, ज्ञान हो, विज्ञान हो, शास्त्र को जानते हो, सहनशीलता हो। तो ये लिखा है भगवान तो सबके परमात्मा, सबके हृदय में बैठे हुए अंतर्यामी परमात्मा है, तो भगवान सब, तो ये कहते हैं कि आप हमारा इतने मान क्यों बढ़ा रहे हो, आप ही तो सबके पूजने हो। एक श्लोक और पढ़ लेते हैं। तत्वतः सनातनो धर्मो रक्षति तनुभिस्तव धर्मस्य परमो गुह्यो निर्विकारो भवान मतः। त्वत्तः सनातनो धर्मो, आप ही तो सनातन धर्म के स्थापित और रक्षक हैं, और सनातन धर्म है भगवान की भक्ति। रक्षति, रक्षत तनोभिस्तव, तनोभिस् का मतलब आप अवतार लेकर उनकी रक्षा करते हैं, यदा यदा जी धर्मस्य, धर्म की रक्षा के लिए ही तो आप अवतार कर लेते हैं सनातन धर्म के। धर्मस्य परमो गुह्यो, और धर्म वैसे सामान्य रूप से समझना बहुत रहस्य वाला है, बहुत गुह्यतम है। निर्विकारो, आप में तो कोई विकार है नहीं, आप जो धर्म देते हैं उसमें भी कोई विकार नहीं है, वो तो सदा रहने वाला सनातन है। भगवान, भगवान आप मतः, हमारा तो ये विचार है। तो कुमार अपना विचार दे रहे हैं, आप ही सनातन धर्म के देने वाले और रक्षक हो, बहुत से नाना अवतार लेके उसकी रक्षा करते हो, स्थापना करते हो, आपने ही धर्म की रक्षा की है। वैसे कहते हैं भगवान रामो विग्रहवान धर्मः, साक्षात भगवान धर्म का स्वरूप ही है और अपने स्वरूप से धर्म की रक्षा करते हैं और सारे धर्म से आपको ही जानना है और यही हमारा विचार है। हमारे मत में आप निर्विकार हो और आप सनातन हो, आप सदा रहने वाले हो। चक्रवर्ती व्यासपाद लिखते हैं इसका जो सनातन धर्म है वो है भक्ति, वो आपसे उत्पन्न होती है और आप ही उसके, आपका स्वरूप ही उसका रक्षक है, आपका रूप ही उसका रक्षक है। कौन से रूप में भगवान पूछते हैं कि मैं भक्ति की रक्षा करता हूं अगर, तो कुमार कहते हैं भक्तों के द्वारा भक्ति की रक्षा करते हो, ब्राह्मणों के द्वारा नहीं करते हो, भक्तों के द्वारा करते हो। हम ये जानते हैं, हमारा मत ये है कि धर्म कथ का अंतिम लक्ष्य है, जो धर्म का जो अंतिम फल है वो बहुत गोपनीय है, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है। चक्रवर्ती लिखते हैं लोगों को सम्मान मिलता है क्योंकि वो धर्म के नियमों का पालन करते हैं और धर्म का जो लक्षण है वो है भक्ति। केवल वर्ण आश्रम में इतनी स्थिरता नहीं है कि वो सदा के लिए रह सके, भक्ति जो है वो नित्य है और भक्त ही इस धर्म को, भक्ति को, भक्त ही इस भक्ति वाके धर्म का संचालन करते हैं, स्थापित करते हैं, प्रचार करते हैं। इसलिए भक्त ब्राह्मणों से महान है, ये है इस श्लोक का भाव। सनातन धर्म भक्ति को कहते हैं जो भगवान आपसे उत्पन्न होती है। दृष्टि ही सताम दर्शने अस्तु भवत तनु नाम, ये श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 10वें अध्याय के 38वें श्लोक में लिखा है। क्या लिखा है? हमारी आंखों से वैष्णव का दर्शन हो, क्योंकि वैष्णव आपसे अभिन्न है, तो भगवान आपके भक्त आपसे अलग नहीं है, वही आपके सनातन धर्म भक्ति की स्थापना करते हैं, प्रचार करते हैं। तो धर्म की रक्षा आप भक्तों के द्वारा कर, भक्ति धर्म का अर्थ भक्ति, और उसकी रक्षा आप करते हैं भक्तों के द्वारा, क्योंकि वो सर्वत्र भक्ति में लगे रहते हैं और भक्ति का प्रचार करते रहते हैं। आप ही तो लिखा चक्रवर्ती व्यास कहते हैं आप ही तो धर्म का परम फल है, अंतिम फल तो धर्म, धर्म क्यों, धर्म का पालन करें क्यों, आपको प्राप्त करने के लिए, तो धर्म का अंतिम फल है आपकी प्राप्ति। तो फिर ऐसी अगर ये धर्म का अंतिम फल है आपकी प्राप्ति, तो फिर ये स्वर्ग आदि के प्राप्त करने वाला धर्म जो अस्थाई है वो धर्म नहीं हो सकता। और इसलिए, और वो धर्म में परिवर्तन हो जाएगा, आप में तो परिवर्तन होता नहीं है, निर्वकार हैं आप, निर्विकार भवान आप हैं, निर्विकार, आपको ही प्राप्त करना भक्ति का लक्ष्य है। दूसरे धर्मों को न सनातन कह सकते हैं और न निर्विकार कह सकते हैं, उनमें विकार है, परिवर्तन है। तो ये अब एक इसके ऊपर श्रील प्रभुपाद जी के भाव को देखकर और फिर दो शब्द कोई आवश्यकता है तो कहते हैं। इस श्लोक में प्रभुपाद जी लिखते हैं धर्मस्य परमो गुह्यो का अर्थ है जो भगवत गीता में भगवान ने कह दिया है, सर्वधर्मान परित्यजम माम एकम शरणम, ये है धर्म का गुह्य अर्थ, क्योंकि उसी को गुह्यतम ज्ञान कहा है। तो प्रभुपाद जी उसको सरल कर रहे हैं कि सारी गीता का सार गुह्यतम ज्ञान भगवान ने दिया है वो है सर्वधर्मान परिचय माम एकम क्षण, तो वो है भक्ति। तो इसका मतलब परम सनातन धर्म है भक्ति। ये गुह्य है, प्रभुपाद कहते कोई कृष्ण भावना के नियमों का पालन करे तो उनको कोई कठोर धर्म के नियमों के पालन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, उसमें अपना अपना समय न व्यर्थ में गवाए, बड़े बड़े यज्ञ पूजा या एक पढ़ने पढ़ने में टाइम न, सिर्फ हरे कृष्णा जपे और भगवान को प्राप्त करे, ये सबसे उत्तम और सबसे श्रेष्ठ और सबसे गुह्यतम धर्म है। और यहां चार कुमार इस बात की पुष्टि कर रहे हैं। अब प्रभुपाद जी प्रचार की दृष्टि कहते हैं, धर्म का उद्देश्य देवता के लोक को प्राप्त करना या देवता की पूजा करना नहीं, ये तो मूर्खों ने ऐसा कम बुद्धि वालों ने चारों ओर से इस तरीके से पूजा से लोगों को लुभाने के लिए काम चला रखा है। परंतु भागवत भगवत गीता से हमें पता लगता है, ये जानकारी मिलती है कि ये परम लक्ष्य नहीं है। परम लक्ष्य तो है वैकुंठ। कुछ लोग तो ऐसे चारों ओर से मत अपना चलाते हैं, किसी की भी पूजा करो एक जगह जाओगे, ये तो भगवत गीता नहीं मानती है। देवता की पूजा करोगे देवलोक में जाओगे, पितर की पूजा करोगे पितृलोक में जाओगे, भगवान की भक्ति करेंगे भगवत लोक में जाएंगे, तो फिर कैसे, तो सनातन धर्म क्या है? तो यहां प्रभुपाद जी लिखते हैं, भगवान सनातन है, उनके सेवक सनातन है और उनका धाम सनातन है, इसी को सनातन धर्म कहते हैं। और ये है भक्ति, इसलिए ये अस्थाई नहीं है, ये नित्य है, शाश्वत है। ये तो भगवान सिखाने के लिए वैष्णव और ब्राह्मणों की महिमा गा रहे हैं, परंतु भगवान ही पूजने हैं देवताओं के लिए, ब्राह्मणों के लिए, वैष्णव के। प्रभुपाद जी ने एक प्रवचन में कहा है, सनातन धर्म वो है जिसमें कभी परिवर्तन नहीं होता, और ये धर्म है जीव आत्मा का, और वो धर्म है प्रेम और सेवा करना। और प्रभुपाद जी लिखते हैं, धर्म की परिभाषा ही है जिसके ऊपर कोई चीज टिकी हुई हो, वो चीज निकालो तो धर्म नहीं रहेगा। कोई कहे कि मैं आज पहले हिंदू था, अब मैं ईसाई हो गया हूं, फिर मैं मुसलमान हो गया हूं, तो ये धर्म नहीं है। धर्म जब बदलता ही नहीं, उसमें विकार होता ही नहीं है, वो धर्म वो है जिसमें विकार नहीं होता है। सनातन धर्म में विकार नहीं होता है। तो धर्म है प्रेम और सेवा करना, और वो प्रेम और सेवा किसकी करना, जो सनातन पुरुष है। और उसकी सेवा किस रूप किस मार्ग से करनी है, सनातन मार्ग से। और सनातन मार्ग है भक्ति का, जो मुक्ति से पहले भी और मुक्ति के बाद भी। तो सनातन मार्ग भक्ति से सनातन पुरुष श्री कृष्ण की जो परम सत्य है, भक्ति के द्वारा जो सनातन धर्म की परिभाषा है, यही सनातन धर्म का अर्थ है। लोग इसका कुछ भी अर्थ निकाले, वैदिक धर्म सनातन, लेकिन सनातन अब देखो, कोई चाहे ईसाई हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, लेकिन सेवा सभी करते हैं, प्रेम सभी करते हैं। ये प्रेम और सेवा किसी से निकालोगे तो फिर वो जीव ही नहीं रहेगा। प्रभुपाद कहते हैं, चिड़िया भी सेवा करती है, अपने बच्चे के लिए घोंसले में दाना लाती, गाय अपने बछड़े को चाटती है, तो पशु भी सेवा करते हैं, क्यों? ये धर्म तो आत्मा का है। तो सब जीवों को सेवा और प्रेम करना है, और सब कर ही रहे हैं, कोई देश से कर रहा है, कोई पुत्र से कर रहा है, कोई धन से कर रहा है, लेकिन सनातन धर्म तो वो है जो सदा रहने वाला हो। ये तो न तो देश की सीमाएं सदा एक जैसी रहती हैं, और न ही पिता दादा पुत्र सदा रहते हैं, सदा रहता है एक भगवान, और सदा उनके साथ संबंध स्थापन करने का धर्म है, सनातन धर्म है भक्ति। ये आज हमने 18वें श्लोक तक पढ़ा, भगवान श्री कृष्ण कृपा करेंगे तो कल 19वें श्लोक से आगे पढ़ेंगे। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न जिज्ञासा है तो बोलिए। कोई प्रश्न है, जिज्ञासा है? हरे कृष्णा। गौर भक्त वृंद की जय। श्री प्रभुपाद की जय। है कुछ नहीं बिताए गौर प्रेमानंद। हरि हरि बोल। अच्छा।